नमस्कार भारत, तारीख 27 फरवरी दिन सोमवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज पांचवें चरण का मतदान, 11 जिलों की 51 सीटों पर कसौटी पर होंगे सियासी दिग्गजों के दावे।
अंदाज नहीं होगा ये कैसी आंधी चल रही है।
जब चुनाव में आप जाओगे तो ये जनता आपको दिल्ली में नहीं आने देगी।
सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद कर्नाटक में हजारों सरकारी कर्मियों के सामने पदोन्नति गंवाने का खतरा।
सीनियरिटी दिने माडिरोदरिंद ऑन पार विद दी जनरल कैंडिडेट सीनियरिटी के।
सुनवाएंगे पाकिस्तान से वसुतुल्ला खान की डायरी और खेल की दुनिया का जायजा लेने वाला साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के पांचवें चरण में आज नेपाल से लगे तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में 14 सीटों पर समाजवादी पार्टी की गठबंधन सहयोगी कांग्रेस ने भी उम्मीदवार उतारे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 7 चरणों में मतदान हो रहा है, जिसके नतीजे 11 मार्च को आएंगे। संयुक्त राष्ट्र के राहत सामग्री वितरण केंद्र पहुंचे प्रभावित परिवारों ने दक्षिण सूडान में अकाल की भयानक स्थिति बयान की है। महिलाओं ने बताया है कि किस तरह वो कई सप्ताह तक दलदल में रहीं और नीलकमल, ताड़ के फल और जंगली शहद आदि खाकर जिंदा रहीं। वितरण केंद्र में मौजूद बीबीसी संवाददाता का कहना है कि बहुत से बच्चे गंभीर कुपोषण से पीड़ित हैं। संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण सूडानी विद्रोहियों से बातचीत कर उनके कब्जे वाले इलाके तक पहुंच सुरक्षित की है और राहत सामग्री की पहली खेप लोगों तक पहुंच पाई है। दक्षिण सूडान में जारी गृह युद्ध के बाद आया अकाल बीते 6 सालों में विश्व के किसी भी हिस्से में आया पहला अकाल है। संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी संगठन का कहना है कि इस साल दक्षिणी सूडान से जान बचाकर सूडान भागने वाले लोगों की संख्या में भारी वृद्धि आई है। पोप फ्रांसिस ने कहा है कि वो आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी जस्टिन वेल्बी के साथ दक्षिण सूडान की यात्रा पर विचार कर रहे हैं। वो रोम में एंग्लिकन चर्च की यात्रा के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा, युवा चर्चों में बहुत ऊर्जा और रचनात्मकता है, इसलिए ही साथ मिलकर काम करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर मैं और मेरी टीम दक्षिण सूडान की यात्रा की संभावना पर विचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एंग्लिकन, प्रेस्बिटेरियन और कैथोलिक बिशप तीनों साथ आए और मुझसे आग्रह किया कि आप दक्षिण सूडान आएं, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए। मैं अकेला नहीं जा रहा हूं, मैं आर्क बिशप ऑफ कैंटरबरी जस्टिन बेल्वी के साथ जा रहा हूं। चिली में आई भारी बारिश और तूफान और भूस्खलन से मुख्य नदी दूषित हो गई है, जिसकी वजह से प्रशासन को राजधानी सैंटियागो की पानी आपूर्ति बाधित करनी पड़ी है। इससे करीब 40 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। यहाँ शनिवार को भारी बारिश शुरू हुई थी, जिससे कीचड़ माइपो नदी में भर गई। शहर के अधिकतर घरों में पानी की आपूर्ति इसी नदी से होती है। अधिकारियों का कहना है कि पानी के साफ होने तक आपूर्ति बाधित रहेगी। प्रशासन ने शहर के सभी रेस्तरां और दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। लोग बोतल बंद पानी इकट्ठा कर रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक बाढ़ से कम 4 लोगों की मौत भी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन में पद के लिए प्रस्तावित एक और उम्मीदवार ने सरकार के हितों में टकराव के नियमों की वजह से अपना नाम वापस ले लिया है। नौसेना के मंत्री पद के लिए ट्रंप की पसंद फिलिप बाइडेन ने अपनी निजता और व्यापारिक हितों से अलग होने की चुनौतियों का हवाला देते हुए अपना नाम वापस लिया है। रक्षा मंत्री जिम मैटिस का कहना है कि वो बाइडेन की जगह अगले कुछ दिनों में नया नाम प्रस्तावित करेंगे। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में संयुक्त राष्ट्र शांति बलों ने भारी हथियारों से लैस मिलिशिया का बमबारी शहर पर हमला नाकाम कर दिया है। शांति बलों के एक प्रवक्ता ने कहा कि FPRC के करीब 40 लड़ाकों को शहर में इकट्ठा होते हुए देखा गया था, जिन पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर की मदद से हमला किया गया। इस साल के ऑस्कर अवार्ड समारोह के लिए फिल्म सितारे और सिने जगत की हस्तियां कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में जुट रहे हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी सुन रहे हैं लाइव। भारत में सोमवार की सुबह खिलने लगी है, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्से यानी अमेरिका में अभी रविवार की रात रोशन है। लॉस एंजल्स के डॉल्बी थिएटर में सितारे सजे हैं और उन्हें इंतजार है ऑस्कर का। हमारे सहयोगी दिलनवाज पाशा आगे ऑस्कर का अपडेट देंगे और हम खबरों की शुरुआत करते हैं भारत के उत्तर प्रदेश से, जहां आज विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण के लिए अब से थोड़ी देर में मतदान शुरू होना है। वोटिंग 11 जिलों की 52 सीटों पर तय थी, लेकिन एक उम्मीदवार की मौत की वजह से अंबेडकर नगर की अलापुर सीट पर अब 8 मार्च को मतदान होगा। ये दौर अहम है। सभी पार्टियों के नेताओं ने प्रचार में पूरा जोर लगाया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली, बहुजन समाज पार्टी की ओर से मोर्चा संभाला मायावती ने, और समाजवादी पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अभियान की अगुवाई करते रहे। हर नेता ने वोटरों के अपने पक्ष में होने के दावे किए।
शायद हिंदुस्तान के और कोने में या दिल्ली में एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके राजनीति पर चर्चा करने वालों को अंदाज नहीं होगा कि ये कैसी आंधी चल रही है।
चुनाव में बीएसपी की सीटें भी उसी के हिसाब से यहाँ आने वाली भी हैं।
अगली बार जब चुनाव में आप जाओगे तो ये जनता आपको दिल्ली में नहीं आने देगी, और उसकी शुरुआत अगर कहीं से हो रही है तो उत्तर प्रदेश से शुरू हो रही है।
प्रचार का शोर दो दिन पहले थम चुका है, आज जो आवाज सुनाई देगी वो होगी ईवीएम की बीप। हम आपको बता दें कि आज जिन 51 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें से 37 समाजवादी पार्टी के पास है। इस दौर में कांग्रेस के गढ़ अमेठी में भी वोटिंग होनी है। ये दौर बीजेपी और बीएसपी के लिए भी अहम है, लेकिन क्यों, बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर आत्मज मिश्र अपनी इस रिपोर्ट में।
आज जिन 51 सीटों पर मतदान हो रहे हैं उनमें अमेठी जैसी महत्वपूर्ण सीट भी शामिल है। अमेठी कांग्रेस पार्टी का गढ़ तो है ही, गठबंधन के बावजूद समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार भी यहाँ से मैदान में है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह की पत्नी कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, तो उनका मुकाबला संजय सिंह की ही पहली पत्नी से है जो कि बीजेपी से उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी अमेठी से सांसद हैं और उनकी बहन प्रियंका गांधी पिछले कई चुनावों से अमेठी और रायबरेली में प्रचार करती रही हैं, लेकिन ये पहला मौका है जबकि वो पूरे चुनाव के दौरान अमेठी नहीं आई। अमेठी के लोगों को इस बात का मलाल भी है। अमेठी के वरिष्ठ पत्रकार योगेंद्र श्रीवास्तव कहते हैं,
प्रियंका जी का यहाँ ना आना चूंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के इलेक्शन मैनेजमेंट को प्रियंका जी देखती आई हैं, लेकिन एक चीज ये है, पिछले इलेक्शन में विधानसभा के चुनाव में रायबरेली और अमेठी में एक सप्ताह से अधिक रुक करके प्रियंका ने रोड शो किया, कैंपेन किए और सीट केवल जगदीशपुर और तिलोई की जीत पाई।
पांचवें चरण की ज्यादातर सीटें नेपाल से लगे तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश के इलाकों में आती हैं। समाजवादी पार्टी के लिए जहां अपनी 37 सीटें बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी और बीएसपी सरकार बनाने के लिए यहां से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करने की कोशिश में लगी है। साल 2012 के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को यहां से 5-5, बीएसपी को 3 और पीस पार्टी को 2 सीटें मिली थी। अमेठी के अलावा इस चरण में बलरामपुर, गोंडा, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर और सुल्तानपुर जिले की विधानसभा सीटें शामिल हैं। समाजवादी पार्टी ने इस चरण की 14 सीटें गठबंधन की साथी कांग्रेस को दे रखी हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी अमेठी और सुल्तानपुर की ज्यादातर सीटें चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो अमेठी सीट पर भी उम्मीदवार उतार दिया है। योगेंद्र श्रीवास्तव बताते हैं कि प्रियंका गांधी के यहाँ न आने के पीछे एक कारण ये भी है।
यहाँ के क्षेत्रीय लोगों में इस बात का चर्चा तो है ही है कि प्रियंका जी ने मैनपुरी, इटावा और कन्नौज जो कि सपा का गढ़ था, वो समझौते में ये था कि वहाँ पे कांग्रेस अपनी प्रत्याशी नहीं उतारेगा और अमेठी और रायबरेली में सपा अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगा, क्योंकि वो यहाँ की मीडिया से सामना नहीं करना चाहती थी, क्षेत्रीय लोग पूछते उससे सामना नहीं करना चाहती थी। इन सब कारणों को देखते हुए भी एक ये मुद्दा था।
अमेठी से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राज्य के चर्चित मंत्री गायत्री प्रजापति हैं। पिछले दिनों उनके खिलाफ रेप का एक मुकदमा भी दर्ज हुआ था। इसी चरण में गोंडा से विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह, अयोध्या से तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे और अकबरपुर से बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष राम अचल राजभर मैदान में हैं। समीर आत्मज मिश्र, बीबीसी अमेठी।
समीर आत्मज मिश्र इस समय अमेठी में हैं और फोन लाइन पर सीधे हमसे जुड़ चुके हैं। समीर जी, रानी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, सबकी साख कसौटी पर है। मतदान थोड़ी देर में शुरू होना है, कैसा माहौल देख रहे हैं आप?
जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा वात्सल्य की, यहाँ पे सबकी प्रतिष्ठा बिल्कुल दांव पे लगी हुई है। ये अमेठी का जंगल रामनगर प्राथमिक स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है, पोलिंग बूथ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और यही वो जगह है जहाँ पे ये जो पावर सेंटर की आप बात कर रहे हैं, मुख्य रूप से अमेठी के संजय सिंह और उनकी जो दो पत्नियां, पहली पत्नी और दूसरी पत्नी, दोनों चुनाव मैदान में है, वो सभी लोग यहीं के मतदाता हैं। और सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो अभी तक मैं जितने पोलिंग बूथ पर घूम चुका हूँ, सुबह के समय 6:30-7 के समय 6 बजे इतनी सुरक्षा की व्यवस्था अभी तक कहीं पे नहीं दिखाई दी है। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, BSF के जवान हैं, कई अधिकारी यहाँ पे सुबह से ही मौजूद है। मैं 6:15 से ही देख रहा हूँ कि यहाँ पे अधिकारियों की बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी है, और मतदान अभी कुछ देर बाद ही शुरू होगा
जी। 20 मिनट रह गए हैं, क्या वोटर भी आपको दिख रहे हैं, कोई उत्साह कुछ? अभी तो खैर बहुत सुबह है, जल्दी है।
मैं वही आपको कहना चाह रहा था कि अभी तक मुझे कोई मतदाता यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ा है, केवल अभी सुरक्षा कर्मी और जो पोलिंग अधिकारी, मतदान अधिकारी हैं, वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और देखिए, इन लोगों के अलावा अगर मतदाता भी अगर इसी तरह से उत्साह दिखाता है, तो जिस तरह से निर्वाचन आयोग ने ज्यादा से ज्यादा लोगों के वोट करने की अपील की है, वो फिर सफल रहेगा।
जी शुक्रिया समीर जी, हम अगले कार्यक्रम में फिर आपके पास आएंगे, अपडेट लेंगे।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
हमारे कई वरिष्ठ श्रोता जानते होंगे कि रिटायरमेंट करियर का वो पड़ाव होता है जहां हर कोई सुकून के साथ पहुंचना चाहता है, लेकिन अगर रिटायरमेंट के कुछ पहले डिमोशन यानी पदोन्नति वापस होने का खतरा हो तो फिक्र बढ़नी लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद कर्नाटक में 10,000 से ज़्यादा कर्मचारियों के सामने ऐसी ही चिंता की स्थिति बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पदोन्नति में आरक्षण की नीति को खारिज कर दिया था। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी की ये रिपोर्ट।
डी उदयशंकर कर्नाटक के लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर हैं। अगले 2 साल में वो रिटायर होने वाले हैं और उनको ये पता नहीं है कि वो एक स्तर नीचे दर्जे के अफसर बनकर रिटायर होंगे या 2 स्तर। उदयशंकर ने कहा, हमें अभी ये कहना मुश्किल है कि हम कितने दर्जे नीचे जाएंगे। एक दर्जा हो तो हम सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हो जाएंगे, या नहीं तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यानी 2 दर्जे नीचे। वेतन में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारी 33 साल की सर्विस हो गई है। लेकिन गदग जिले के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देवेंद्र नायक इसको अलग नजरे से देखते हैं। उन्होंने कहा,
सर नमगे टोटली सीनियरिटी ने डिले मारिदर सर, सीनियरिटी डिले मारिदरिंद ऑन पार विद द जनरल कैंडिडेट सीनियरिटी।
दरअसल ये मामला 2001 के 85वें संविधान संशोधन का है, जब प्रमोशन में दलितों को आरक्षण दिया गया। कर्नाटका ने इस बारे में कानून बनाया जिस पर मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। कोर्ट का कहना था कि सरकार ने इस कानून को लाने से पहले जातियों का पिछड़ापन नहीं देखा है, इसके साथ ये भी नहीं देखा है कि क्या इन जातियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं है, और इसका असर प्रशासन की दक्षता पर क्या होगा। लेकिन पूर्व एडवोकेट जनरल रवि वर्मा कुमार ने कहा,
दिस हैज कम एज अ रूट शॉक टू ऑल द प्रमोटर्स अंडर द रिजर्वेशन कोटा।
ये तो एक झटका है दलित अफसरों को। ये कोर्ट का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के ही 2 संविधान पीठ के आदेशों के खिलाफ है। इंदिरा स्वाने का मामला और NM थॉमस के मामले में संविधान पीठ ने स्पष्ट किया है कि दलित जातियों का पिछड़ापन सिर्फ संसद ही तय कर सकती है, और कर्नाटका सरकार कोई कार्यकारी आदेश नहीं निकाला है, उसने तो कानून बनाया है। ये थे रवि वर्मा कुमार के शब्द। कर्नाटका में सिर्फ एक ही चारा है, वो सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका डाल सकती है, ये कहते हुए कि उसके निर्णय में बहुत निर्बाधत्व हैं। अगर कोर्ट इस याचिका को नहीं माना तो इस मामले को एक संवैधानिक बेंच को भी भेज सकती है। बहरहाल उदय शंकर और देवेंद्र नायक जैसे अफसरों के लिए ये एक परेशानी की बात तो रहेगी। इमरान कुरैशी, BBC बेंगलुरु।
आगे बढ़ते हैं, आपको याद होगा कि बीते हफ्ते दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी और ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन यानी आईसा के सदस्यों के बीच टकराव हुआ था। वजह थी एक कार्यक्रम। इस टकराव में कई छात्र घायल हुए और दिल्ली पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे। ये मामला वहीं खत्म नहीं हुआ, अब टकराव सोशल मीडिया पर जारी है। गुरमेहर कौर नाम की एक छात्रा ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर पोस्ट की जिसमें लिखा था कि वो एबीवीपी से नहीं डरती। ये पोस्ट वायरल हो गई। हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने गुरमेहर से पूछा कि वो किस वजह से विरोध के लिए सामने आई है।
मेरी जो फीमेल दोस्त है उनको काफी रेप के थ्रेट्स दिए गए थे एबीवीपी के मेंबर्स से, जिन्होंने उनके ऊपर फिजिकल असॉल्ट किया था। और जो मेरे कुछ आगे मेल फ्रेंड्स भी हैं, उनको मारा गया था, पीटा गया था। अपने खुद के दोस्तों के सपोर्ट के लिए विरोध स्टार्ट किया है।
तो सोशल मीडिया पर अपनी फोटो डाली है, उसके बाद जो है ये आग की तरह फैल गया और कई और स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी अपनी जो है तस्वीर आपके सपोर्ट में डाली है। इसी तरह
कारण है जिसके कारण ये आग की तरह फैला है। मैं अकेली नहीं हूँ इस थॉट के साथ, पूरा इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं वो ये मानते हैं और मेरे साथ यही चाहते हैं कि यू नो कि हम स्टैंड अप करें एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जो हूलिगनिज्म और गुंडागर्दी प्रमोट करता है।
सोशल मीडिया पर भी आपका काफी विरोध हुआ।
सोशल मीडिया पे काफी ट्रोल्स और मीम्स बने हैं और लोग मुझे काफी हद तक एंटी नेशनल बोल रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने भी वो मीम बनाए हैं या शेयर किए हैं नेशनलिज्म के नाम पर, वेल उन्हें शर्म आनी चाहिए क्योंकि ये कोई मजाक करने का टॉपिक नहीं है।
अच्छा, आपके परिवार ने आपको नहीं कहा कि आप इस तरह का विरोध करने जा रही हैं सोशल मीडिया पर?
आज तक हमें सिखाया गया है कि सही चीज के लिए खड़े होना चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो हाँ, मेरे घर में सब बरेड जरूर है, पर किसी ने अभी तक ये नहीं बोला कि बेटा तुमने गलत किया। सब बोल रहे अच्छा किया, जो भी किया जैसे भी है।
हम आपको बता दें कि गुरमेहर के पिता कैप्टन मनदीप सिंह कारगिल युद्ध के दौरान मारे गए थे। सोशल मीडिया पर गुरमेहर को नसीहतें भी दी जा रही हैं। दूसरे पक्ष का क्या कहना है ये जानने के लिए हरिता कांडपाल ने ही एबीवीपी की नेता प्रियंका से बात की।
विरोध कोई ऐसी आम बात पे विरोध नहीं है। विरोध है कि जब आप देश को अलग करने की बात करते हो, जब आप कश्मीर को अलग करने की बात करते हो, जब आप अफजल गुरु और मकबूल भट्ट को मार्टियर की तरह प्रेजेंट करने की बात करते हो, जब आप कॉलेज के अंदर देश विरोधी नारे लगाते हो, ये देश का सवाल है। ये कोई आम मुद्दा नहीं है कि कॉलेज के अंदर अटेंडेंस नहीं हो रही या कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड नहीं मिल रहे तो हम संवाद से इसको पूरा कर ले। और हम तो डिबेट और डिस्कशन के लिए हमेशा रेडी हैं, मगर जब बात आती है देश के टुकड़े करने वाले लोगों को विश्वविद्यालय के अंदर आने की, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
सोशल मीडिया पर भी जो है एबीवीपी के विरोध में और समर्थन में भी काफी कुछ चल रहा है, इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है?
पूरा देश जानता है कि विद्यार्थी परिषद एक राष्ट्रवादी एक छात्रवादी संगठन है जिसने हमेशा गलत के खिलाफ आवाज उठाई है। रामजस कॉलेज के अंदर जो भी हुआ उससे पूरे युवा के अंदर, इस देश के युवा के अंदर गुस्सा है और उसी का परिणाम है कि हमें हमारे सपोर्ट में इतने लोग खुलकर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर भी।
ये थी एबीवीपी के नेता प्रियंका। वक्त है समाचार पत्रों की समीक्षा का। दिलनवाज पाशा तैयार हैं अखबारों के साथ। दिलनवाज, आप अखबारों की सुर्खियां बताएं, उसके पहले ये बताइए कि ऑस्कर का क्या अपडेट है?
जी, वही रेड कारपेट, लाल पोशाक पहने चलती हुई अभिनेत्री और चमकते हुए कैमरे, और इसके साथ दर्शकों की बढ़ती हुई धड़कनें। यही हाल अभी लॉस एंजलिस के ऑस्कर समारोह का है। कोई नतीजा अभी नहीं आया है, लेकिन जो वेबसाइटें हैं, सोशल मीडिया है, उस पर कयास लगाए जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा बात हो रही है संगीत पर आधारित फिल्म ला ला लैंड की, जिसे 14 श्रेणियों में नामांकन मिला है। भारतीय मूल के अभिनेता देव पटेल को भी इस बार ऑस्कर मिलने की उम्मीद है। और यही नहीं, इसके साथ बहुत रंगीन तस्वीरें जो है ऑस्कर समारोह से आ रही हैं। जो श्रोता हमें सुन रहे हैं वो इन तस्वीरों को देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर आ सकते हैं। अब से कुछ समय और लगेगा अभी नतीजे आने में।
जी, आपने बताया ऑस्कर का अपडेट, अब ये भी बता दीजिए कि दिल्ली के अखबारों में आज क्या खबरें प्रमुखता से आई हैं।
जी, सबसे बड़ी खबर है गुजरात से, जहां कल भारतीय जांच एजेंसियों ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। इन्हें लून वुल्फ अटैकर बताया जा रहा है। रिपोर्टों में कहा गया है सुरक्षा एजेंसियों के हवाले से कि ये दोनों भाई आईएस के इशारों पर काम कर रहे थे। इसके अलावा एक और खबर जो सुर्खियों में है वो है सेना का पर्चा लीक हो गया है और इस वजह से परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी हैं। इसी से जुड़ी लगभग ऐसी ही एक खबर दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर है। हमने कल अपने श्रोताओं को बताया था कि वहां पर प्रशासनिक जो नौकरियां होती हैं उनके भर्ती में घोटाला हुआ था और इसमें एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को गिरफ्तार किया गया था। अब उनके समर्थन में बिहार के पटना में आईएएस अधिकारियों ने जो है मार्च निकाला है, उनकी तस्वीर दैनिक जागरण के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा पंजाब केसरी ने सवाल उठाया है, आखिरकार बिचौलियों की मौत का सच क्या है, ये व्यापम घोटाले से जुड़ी हुई खबर है। एक और खबर नई दुनिया के पहले पन्ने पर है जिसमें कुछ दिन पहले शोभा डे ने एक तस्वीर शेयर की थी ट्विटर पर जिसमें उन्होंने एक पुलिस वाले जो काफ़ी मोटे हैं उनकी तस्वीर शेयर की थी। अब इनके बारे में जो है अखबार लिखता है कि मैं इससे बहुत दुखी था।
जी बहुत शुक्रिया दिलनवाज अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
अब आपको सुनवाते हैं वसुतुल्ला खान की डायरी, जो आज भारत और पाकिस्तान के उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं जो गलती से नियंत्रण रेखा पार कर जाते हैं।
जब पिछले वर्ष सितंबर में उड़ी में आतंकवाद हमला हुआ तो उसके 3 दिन बाद 2 युवा भी गिरफ्तार हुए जिनके बारे में भारतीय टीवी चैनल्स पे ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होनी शुरू हुई कि ये 2 चरवाहे हैं जो आतंकवादियों के गाइड थे, उनसे कड़ी पूछताछ हो रही है। बाद में पता चला कि ये लड़के तो मुजफ्फराबाद के एक स्कूल में मैट्रिक में पढ़ रहे थे और सैर सपाटे के लिए निकलते निकलते लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी तरफ पहुंच गए और धर लिए गए। अब संकेत ये मिल रहे हैं कि इन लड़कों को निर्दोष पाया गया है और आशंका है कि उन्हें किसी भी दिन पाकिस्तान लौटा दिया जाएगा। अब से 2 दिन पहले ये हुआ कि भारतीय कश्मीर की ओर से 2 वर्ष पहले भटक के लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार आ जाने वाले गांव गुरेज के बिलाल अहमद और कुपवाड़ा के अरफाज यूसुफ को चकोटी उड़ी सेक्टर के क्रॉसिंग पॉइंट पे पाकिस्तानी फौजी कर्मचारियों ने तोहफों और मिठाई के साथ भारतीय अफसरों के हवाले किया। बिलाल का भाई जावेद और अरफाज के पिताजी यूसुफ भी उन्हें लेने पुल पर मौजूद थे। मगर सियालकोट के दीवारा गांव की 53 वर्षीय रशीदा बीबी इतनी खुशकिस्मत ना थी। वैसे भी उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था, चुनाचे वो इसी हालत में अब से 5 दिन पहले सियालकोट जम्मू वर्किंग बाउंड्री की तरफ निकल गई। बीएसएफ के संतरियों ने देखते ही गोली मार दी और रशीदा बीबी का शव पाकिस्तानी रेंजर्स के हवाले कर दिया। जब दो देश किसी मामले में एक दूसरे पर भरोसा ना करते हों तो ऐसा माहौल आम नागरिक के लिए नसीब की लॉटरी बन जाता है। किस्मत अच्छी है तो पकड़े गए और अपनी बिपता सुना के जिंदा रह गए, किस्मत ख़राब है तो मारे जाएंगे या बीसियों वर्ष एक दूसरे की जेलों में सड़ते रहेंगे। मगर अच्छी बात यह है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान दुश्मनी में घटाव बढ़ाव से अलग एक तरह की अपूर्व दृष्टि समझ बढ़ती जा रही है। उदाहरण ये है कि एक दूसरे के भटके हुओं को वापस भेजने के काम में पहले से ज़्यादा तेज़ी आ रही है। अब 5 वर्ष के बच्चे निसार अहमद का मामला ले लीजिए जिसे उसका बाप माँ से झूठ बोल के दुबई के रास्ते जम्मू ले गया, मगर 6 महीने के अंदर अंदर एक भारतीय अदालत ने निसार की माँ रूबीना कियानी की अर्जी निपटा दी और इस महीने के शुरू में निसार को वाघा अटारी बॉर्डर पर उसकी माँ के हवाले कर दिया गया। अब से 10 वर्ष पहले इस तरह का केस निमटने में कम से कम 5-10 साल लगना नॉर्मल बात समझी जाती थी। इसी तरह पहले भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के मछेरे पकड़ने के बाद उन्हें जेल में डाल के भूल जाया करते थे और जब दोनों देशों के दरमियान घड़ी दो घड़ी के लिए नेताओं की पप्पियाँ जप्फियाँ होती और आसमान पर ऐसा बर्म दिखाई देने लगता कि बस अब दोस्ती हुई कि तब हुई, तो बेचारे मछेरों को भी खुशी के समय छोड़े जाने वाले कबूतरों की तरह आज़ाद कर दिया जाता। मगर अब 6 महीने मछेरों को मेहमान रख के छोड़ दिया जाता है ताकि नए पकड़े जा सकें। इस ट्रेजेडी को कम करने में दोनों देशों की एनजीओज भी अहम भूमिका निभा रही हैं। भिनती बस इतनी है कि आपस में भले दोनों देश एक दूसरे के साथ कितने ही घटिया व्यवहार पर उतर आएँ पर निर्दोष नागरिकों को अपने दंगल में ना घसीटें। अगर दंगल में घसीटने का इतना ही शौक है तो आमिर खान की दंगल हमारे लिए बहुत है।
दंगल मैदान में ही अच्छा लगता है। और खेल के मैदान में क्या कुछ हुआ जानते हैं साप्ताहिक पेशकश खेल और खिलाड़ी में।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। कार्यक्रम की शुरुआत क्रिकेट से। साल 2012 के बाद अपनी ही जमीन पर ऑस्ट्रेलिया के हाथों पुणे में खेले गए पहले टेस्ट मैच में हार के बाद भारतीय क्रिकेट टीम सुर्खियों में छा गई है। अब जो टीम 19 टेस्ट मैच जीते और उसके बाद उसे 333 रन से हार का सामना करना पड़े तो ऐसा होना तो लाजमी ही था। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया का पिछला दौरा भारत में किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जब साल 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में 4-0 से धोया था। विकेट तो तब भी वैसे ही थे जैसा पुणे में था, लेकिन जीत के शोर में पिच की किचकिच दब गई। लेकिन अब भारत हारा तो पिच की चर्चा फिर शुरू हो गई है। क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं,
सवाल है कि ऐसी पिचेस बननी चाहिए या नहीं। मेरा मानना है कि जितना ज्यादा अगर बॉलर्स के हक में जाता है तो फिर बल्लेबाजों के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाती है पैदा कि अच्छी तरह से खेले। और ये एक मुझे लगता है कि अगर आप टेस्ट मैच खेलते हैं तो 2-2.5 या 3 दिन में खत्म होने वाली मैचेस वो दर्शकों के लिए भी अच्छी नहीं है और स्पोर्ट के लिए भी अच्छी नहीं है।
खैर, अब पछताए होते क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। वैसे जब भारत ने पिछली सीरीज में इंग्लैंड को बेहतर विकेट पर 4-0 से हराया तो लगा कि 2-3 दिन में मैच का परिणाम देने वाली पिचों के दिन लद गए। एक और क्रिकेट समीक्षक प्रदीप मैगजीन भी पुणे के विकेट से हैरान दिखे।
थोड़ा सा हैरान इसलिए भी की बात है कि इंग्लैंड के अगेंस्ट जैसे आपने कहा कि हमने अच्छी विकेटें दी, टर्निंग ट्रैक्स थी, लेकिन ऐसी विकेटें नहीं थी कि जहां पहले बॉल से ही गेंद स्क्वायर टर्न करना शुरू करें। उसमें बैट्समैन को भी चांस था और उसमें हमने दिखाया कि हम अपने एट होम अब बिना विशेष टर्नर्स बना के टेस्ट मैच जीत सकते हैं और 4 टेस्ट मैच जीते। तो उसके बाद आप फिर उसी वापसी आपने की है जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जैसे आपने विकेटें बनाई थी, तो ये एक इनसिक्योर माइंडसेट दिखाता है जो मैं समझता हूँ कि होना नहीं चाहिए।
ये तो बात थी पिच की। उधर मैदान के बाहर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने कहा है कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों का कोई समूह आईपीएल के उद्घाटन समारोह का आयोजन नहीं कर सकेगा। हालांकि बीसीसीआई का मानना है कि कोई कंपनी बीसीसीआई से लिखित मंजूरी के बाद कंपनियों को ठेका दे सकती है, पर इसके लिए संबंधित पक्ष ही जिम्मेदार होगा। साथ ही 30 गज के दायरे या पिच के आसपास कोई भी पोर्टेबल मंच नहीं बनेगा। अयाज मेमन सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति के इस कदम को सही नहीं मानते।
मैं कहूंगा कि मुझे ये कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जो मॉडर्न स्पोर्ट है और ना सिर्फ क्रिकेट, किसी भी स्पोर्ट को आप देख लें तो वो कमर्शियल एंटरप्राइज है। ओलंपिक्स के अलावा अगर आप ओलंपिक्स छोड़ दें और आईपीएल जो है, क्योंकि ये तो कॉमर्स के जरिए ही चलती है, तो अगर ओपनिंग सेरेमनी को स्पॉन्सरशिप मिलती है तो क्यों नहीं मिलनी चाहिए, मुझे इसकी लॉजिक अब तक समझ में नहीं।
तो आईपीएल के उद्घाटन समारोह पर उठे सवाल। और अब बात हॉकी इंडिया लीग की, जिसके 5वें सीजन का फाइनल कल चंडीगढ़ में दबंग मुंबई और कलिंगा लांसर्स के बीच खेला गया और इस फाइनल मुकाबले को कलिंगा लांसर्स ने 4-1 से अपने नाम किया। देसी विदेशी खिलाड़ियों के जलवे के बीच फाइनल में कड़े मुकाबले की उम्मीद थी, लेकिन दूसरे क्वार्टर तक जब कलिंगा ने 3-0 की बेहद मजबूत बढ़त दबंग मुंबई पर बना ली थी तो जैसे मैच का फैसला भी तभी हो गया था। इसके बाद मुंबई ने तीसरे क्वार्टर में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर स्कोर 3-1 किया। खेल समाप्त होने से 1.5 मिनट पहले कलिंगा के कप्तान मारिन फ्रुस्टा ने गोल कर अपनी टीम को 4-1 से आगे कर दिया। अंततः 4-1 के स्कोर के साथ ही कलिंगा लांसर्स ने हॉकी इंडिया लीग का फाइनल और खिताब अपने नाम किया।
एक तरफा फाइनल में इन्होंने दबंग मुंबई को करारी शिकस्त देकर ये ट्रॉफी और 2.5 करोड़ रुपए की राशि अपने नाम कर ली है। बहुत बहुत बधाई कलिंगा लांसर्स को।
कलिंगा के ग्लेन टर्नर ने पूरी लीग में 12 गोल किए। और चलते चलते आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने भले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया हो, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट लीग में उनका जलवा बरकरार है। शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में शाहिद अफरीदी के 45 रन की मदद से पेशावर ने क्वेटा को 2 विकेट से हरा दिया। क्वेटा ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केविन पीटरसन के 41 और रिली रोसो के 38 रनों की मदद से निर्धारित 20 ओवर में 128 रन बनाए, जबकि पेशावर ने जीत के लिए 129 रनों का लक्ष्य 19.2 ओवर में 8 विकेट खोकर हासिल कर लिया। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
कार्यक्रम की समाप्ति के पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के पांचवें चरण में आज 11 जिलों की 51 सीटों पर मतदान होगा। संयुक्त राष्ट्र के राहत सामग्री वितरण केंद्र पहुंचे प्रभावित परिवारों ने दक्षिण सूडान में अकाल की भयानक स्थिति बयान की है। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ ये सभा अब यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। बदलती खबरों के लिए तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया दीपक जसरोटिया ने। सभी साथियों के साथ वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।